आरवी की नज़रें भी उस तरह घूम गईं। शान सोफे पर सोया था, हाथ पैर मोड़े मोड़े अकड़ गए थे, तो बेचारा उन्हें स्ट्रेच करते हुए बाहर आ रहा था। उसे देखकर आरवी ने नन्ही मन कहा, तो ये राक्षस वहां सोए थे, लगता है इनकी रात तो काफी अच्छी गुजरी है। सही है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरी नींद खराब की थी तो खुद चैन से कैसे सो सकते थे? भगवान भी खूब इंसाफ करते हैं। उसके लबों पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई। वहीं शान की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसके कदम रुक गए और आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गईं। वो आरवी को गुस्से से घूरने लगा, पर आरवी ने उस पर से अपनी नज़रें हटा ली और बाथरूम में चली गई। शान उसके इग्नोर करने पर और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने गुस्से में ड्रेसिंग टेबल पर से आरवी का सारा सामान एक बैग में भरा और कबर्ड में छुपाने के बाद वहां से चला गया। वो नीचे गार्डन में पहुंचा, जहां सुयश जी के साथ सुभाष जी बैठे सुबह की ठंडी ताज़ी हवा का आनंद ले रहे थे। शान ने कुछ देर उनसे बात की, फिर जॉगिंग करने लगा। कुछ आधे घंटे बाद वापस कमरे में पहुंचा। वैसे जाना तो जिम में था, पर फिलहाल वो आरवी को परेशान होते देखना चाहता था। वो रूम में जैसे ही एंटर हुआ, नज़रें सामने परेशान खड़ी आरवी पर चली गईं। इसके साथ ही शान के लबों पर तिरछी मुस्कान फैल गई, जिसे उसने झट से छुपा लिया और जाकर सोफे पर पसर गया। आरवी हर जगह अपना सामान ढूंढ रही थी और बहुत परेशान लग रही थी। शान वहां आया तो आरवी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसको घूरते हुए बोली, मेरा सामान कहाँ है? शान ने उसके तरफ घूरकर देखते हुए कहा, कैसा सामान? और कोई भी सामान हो मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा सामान था, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। फिर मुझसे ये बकवास सवाल करके मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? उसने बेरुखी से तलखी भरा जवाब दिया और वापस फोन में लग गया। आरवी कुछ पल उसको घूरती रही, फिर उसने दोबारा कहा, मेरा सामान जो ड्रेसिंग टेबल पर रखा था सुबह तक भी वही था। मैं नहाने गई, इतने में सब गायब हो गया और तब आप ही रूम में थे, तो सामान कहाँ है या आपको ही पता होगा। एक बार फिर उसने अकड़ते हुए जवाब दिया, मुझे क्या पता और क्यों पता होगा मुझे? मुझे ना तुम्हें जानने में कोई दिलचस्पी है, ना ही तुम्हारी चीज़ों की खबर रखने का कोई शौक। उसकी बात सुनकर आरवी ने अब भी उस पर नज़रें टिकाते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा, आपने ही उसे गायब किया है। अच्छा, अगर इतना ही पता है तो कहाँ रखा है ये भी पता लगा लो, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? शान ने उसको घूरते हुए जवाब दिया। बदले में आरवी ने भी उसको घूरते हुए कहा, तो आप नहीं देंगे, चलिए ठीक है। इतना कहकर वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। शान उसको तिरछी नज़रों से देख रहा था। आरवी ने ड्रेसिंग टेबल पर से कोम्ब उठाया और जैसे ही करने को हुई, शान तेज़ी से उसके तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ को हाथ लगाने की? आरवी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, जैसे आपकी हुई मेरे सामान को यहाँ से हटाने की। शान अब उससे और ज़्यादा चिढ़ गया, पर आरवी के भाव नहीं बदले। उसने उसी लहजे में आगे कहा, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी चीज़ों को ना छूं, तो चुपचाप मेरा सामान जहां से हटाया है वापस वहां रख दीजिए, वरना फिर देखिए मैं आपके सामान का क्या करती हूं। धमकी दे रही हो मुझे? शान गुस्से से गरजा, तो आरवी ने अपने हाथ बांधकर उसको देखते हुए शांत भाव से कहा, धमकी तो पहले ही दे चुकी हूँ कि मेरे साथ गलत करेंगे तो खुद भी गलत भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि मैं अब आपकी कोई ज्यादती नहीं सहने वाली। अगर आप शांति से मुझे रहने देंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई तूफान नहीं आएगा, वरना तो आप खुद समझदार हैं। अब मेरा सामान वापस कीजिए, वरना नीचे जाकर बड़ी माँ को सब बता देती हूँ। बड़ी माँ का नाम आते ही शान शांत पड़ गया। कुछ देर खामोशी से उसको घूरता रहा, तो वो भी क्यों पीछे रहती? वो भी बराबर उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। शान गुस्से से तमतमाया हुआ कबर्ड की तरफ गया और बैग निकालकर नीचे बिछे कालीन पर पटक दिया और गुस्से में वहां से चला गया। जिम में जाकर एक्सरसाइज करने लगा। वहीं आरवी ने सारा सामान वापस उनकी जगह पर रखा और नहाकर नीचे किचन में चली गई। शान गुस्से में पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाते हुए बोला, तुम जैसी बनती हो वैसी हो नहीं, बिल्कुल भी सीधी साधी नहीं हो तुम, बहुत शातिर हो और ये सिर्फ मुझे पता है। अब कैसे भी करके मुझे तुम्हारा असली चेहरा पूरे परिवार के सामने लाना है, उसके बाद तुम्हें सबके सामने जलील करके इस घर से बाहर फेंक दूंगा और कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। जितना इनके बल पर उड़ना है उड़ लो, बस कुछ वक्त, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर और इस घर के लोगों से दूर चली जाओगी। उसने फोन उठाया और कार्तिक को फोन लगाकर बात करने के बाद कमरे में आ गया। आरवी जा चुकी थी। उसने देखा ड्रेसिंग टेबल पर सब पहले जैसे सेट कर दिया था उसने। ये देखकर शान की मुठ्ठियाँ कस गईं, वो कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। आरवी ने खाना बनाया, फिर अंशु के कमरे में पहुंची तो वो अब भी सो रही थी। आरवी ने बड़े प्यार से उसको जगाया। अंशु ने अपनी छोटी छोटी आंखों को खोलकर उसे देखा और उससे लिपटते हुए बोली, मम्मा नाइट में आप अंशु को अलोन छोड़कर क्यों गई थी? अंशु मुंह फुलाकर उसको देखने लगी। उसकी क्यूट सी शक्ल देखकर आरवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मम्मा आपको अलोन छोड़कर कहाँ गई थी? छाया दीदी तो यहीं थी, मम्मा डैडी के पास गई थी और देखिए अब मम्मा वापस अपनी डॉल के पास आ गई है। चलिए जल्दी से मम्मा आपको रेडी कर देती है, फिर मम्मा अपने हाथों से बेबी को ब्रेकफास्ट करवाएंगी। आरवी ने उसको प्यार से समझाया और अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले गई। फिर उसको नहला धोकर तैयार करके नीचे ले आई। तब तक सुयश जी, सुभाष जी, अर्पिता जी सब वहां आ चुके थे। कुछ देर में शान भी वहां पहुंचा। आरवी ने सबको खाना सर्व किया। फिर शान के पास आई तो उसने अपना हाथ आगे करके उसको रोक दिया, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही आरवी ने झट से कहा, आज कुछ मत कहिएगा क्योंकि मैंने सौरभ भैया से पूछ लिया है, आपको कटहल पसंद है। उसकी बात सुनकर शान की भौहें तन गईं। उसने सौरभ को घूरा तो उसने झट से अपना सर झुका लिया। शान ने अब आरवी की तरफ नजरें घुमाई और तीखी मुस्कुराहट के साथ बोला, पर आज मेरा ये खाने का मूड नहीं है, मुझे शाही पनीर खानी है। बेचारी आरवी का मुंह छोटा सा हो गया। शान उसको तिरछी मुस्कान के साथ देख रहा था। आरवी के पास कोई बचने का तरीका ही नहीं था तो उसने मुंह लटका कर कहा, ठीक है, ला रही हूँ बनाकर। इतना कहकर उसने बाउल नीचे रखा और किचन में चली गई। किचन में जाकर उसने अपने दुपट्टे को कमर पर लपेट कर बांधा और लग गई काम में। लगभग पौने घंटे बाद वो हाथ में बाउल पकड़े बाहर आई और बाउल शान के सामने लाकर रख दिया। शान फोन चला रहा था। अब उसने नजरें उठाई तो सब्जी काफी अच्छी दिख रही थी। आरवी भी वहीं बैठ गई। उसने शान को भी खाना सर्व कर दिया। शान अब भी सब्जी को देख रहा था। डैडी, अंशु को भी पनीर खाना है। अंशिका की मीठी सी आवाज ने शान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शान ने उसे देखा तो अंशु आंखों में चमक लिए मुंह खोले उसे देख रही थी। शान के लब मुस्कुरा उठे। आरवी से उसकी नफरत से कई गुना ज्यादा प्यार वो अंशु से करता है। उसने एक निवाला तोड़कर उसको खिला दिया। अंशु ने उसे खाया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने आरवी को देखकर मुस्कुरा कर कहा, मम्मा पनीर बहुत यमी बना है। उसकी बात सुनकर आरवी भी मुस्कुरा उठी और अपनी प्लेट से एक निवाला उसको खिलाते हुए बोली, ये कैसा बना है? बहुत यमी बना है। अंशु की मम्मा बेस्ट है, वो बहुत यमी फूड बनाती है। अंशिका ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की, जिसे सुनकर शान कुछ खुश नहीं नजर आ रहा था। उसने अंशिका को अपनी तरफ घुमाया और उसको खाना खिलाने बना। आरवी थोड़ा मायूस हो गई पर फिर अंशु को खुश देखकर मुस्कुरा दी। सबने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद शान ने उठते हुए शाम को देखकर कहा,
शाम मेरे रूम का मैट्रेस धूप में सूखने के लिए डाल देना, गीला हो गया है। शान ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, अंशु ने झट से कहा, डैडी आपने बेड पर छींछी कर दी, आप इतने बड़े होकर भी बाथरूम नहीं गए। अंशु तो लिटिल गर्ल है, फिर भी वो रात को भी उठकर बाथरूम चली जाती है, कभी पेट क्यूला नहीं करती। टू बी कंटिन्यूड।